लेकिन वो 100 कदम ठीक अपने घर से विपरीत दिशा में रख रहा है तो कभी नहीं पहुंचेगा, बल्कि अपने घर से उसकी डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी। जबकि रोज उसने अपने घर की तरफ 1 कदम रखा, मतलब रोज मैंने एक अच्छा काम करा था, लेकिन मैंने रोज उसके ठीक विपरीत बहुत सारे बुरे काम भी किए। बताइए फिर मेरे जीवन को मैं इस तरह से अच्छा बना पाऊंगा? सरासरी मतलब इसी चीज के लिए कि हम अपनी शक्ति को व्यर्थ ही नष्ट न करें। जरूरी है कि हम अपने जीवन को एक मर्यादित, एक अनुशासित रूप दें, और उसके लिए छोटे छोटे से 3 व्रत, 3 संकल्प अपने जीवन में हम अंगीकार करें। मुझे अपने जीवन चलाने के लिए, संसार के कामों के लिए सब करना पड़ता है। घर गृहस्थी चलानी है तो संसार के सब काम करना है, वो सब मेरे लिए प्रयोजनीय है, आवश्यक है, इसलिए करना है, लेकिन हम उनकी सीमा निर्धारित करें। हम हर दिशा में और भागेंगे तो किसी एक निश्चित जगह नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए 10 दिशाओं में हम अपनी आवागमन की सीमा निर्धारित कर लें कि मुझे अपने सांसारिक कामों के लिए किस दिशा में कितनी दूर तक जाना है। एक छोटा सा उदाहरण है, शायद समझ में आए। एक व्यक्ति को एक अपने यहाँ पर ट्यूबवेल या कि हैंडपंप लगवाना है, तो उसने कहा कि क्या करना पड़ेगा। तो लोगों ने सलाह दी कि कुछ नहीं, 200-250 फीट पे पानी निकलता है, उतना खोदो बन जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और 2-4 दिन के अंदर फिर उसने उस आदमी को पकड़ा जिसने सलाह दी थी कि 200-250 फीट कुछ खोद लेना, और कहा कि जनाब 250 फीट खोद चुके, अभी तक पानी नहीं निकला। बोले पानी 250 फीट खोदने के बाद भी नहीं निकला, चलें देखें हम क्या किया आपने। सो उस आदमी ने क्या किया था मालूम,
कितने बड़े एरिया में, ये हॉल तो बहुत छोटा है, उसने इतने बड़े एरिया में 20 फीट 10 फीट 20 फीट 10 फीट 250 फीट खोदा उसने, 20-20 फीट 10 जगह 25 जगह भी खोद लें और कहें कि 250 फीट हो गया तो निकलेगा क्या पानी? ये तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, लेकिन अपन तो ऐसे ही अपन भी करते हैं, सुबह से शाम तक शायद यहां से सुख मिलेगा, थोड़ा ये करके देख लो यहां से मिलेगा, थोड़ा ये करके देख लो यहां से मिलेगा, जहां से मिलेगा उसकी चिंता नहीं करते, लेकिन बाकी सब चीजों में हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हमें अपने संसार चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए एक सदगृहस्थ को सांसारिक कार्य तो करना पड़ेंगे, लेकिन एक कोई सीमा तो हो, एक मर्यादा हो अपने आवागमन की। सांसारिक कार्यों के लिए मैं संसार में भटकूं तो कितनी दूरी तक, ये भी एक व्रत है बताइए। मैं किस दिशा में अपने व्यापार व्यवसाय या अपने और किसी काम से जाऊंगा, उसके बाद में उतने में मेरा काम चल जाएगा। इस तरह यदि हम चाहें तो अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। आचार्य भगवंत तो इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं, पढ़ते हैं अपन छेड़ाना में, ताऊ में, फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ध्यान, और फिर बाकी सब सकल निवारा। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मैं अपनी सीमा में रहकर के सांसारिक कार्य करता हूं तो उसमें जो मेरे पापकारी हैं वो प्रयोजनभूत हैं, मैं निष्प्रयोजन पाप से तो बच गया। दो तरह का पाप जो हमारे जीवन में नहीं चाहते हुए भी हम करते हैं, दो तरह से बुराइयां हमारे जीवन में अनायास आती हैं, एक तो निष्प्रयोजन और एक निष्क्रिय पाप। कभी सोचा कि अपन प्रयोजन भूत पाप के लिए तो कुछ भी नहीं कह रहे, गृहस्थ तो करेगा, घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ तो उसे पाप करना पड़ेगा, वो सब प्रयोजन भूत है, लेकिन निष्प्रयोजन पर्पज लेस सिंफुलनेस इसका नाम ही ये रखा। दूसरे नंबर का संकल्प ये लेना चाहिए कि मैं निष्प्रयोजन पाप नहीं, सीमा के बाहर मैं उस निष्प्रयोजन पाप से बच जाता हूं, लेकिन सीमा के भीतर भी मैं निष्प्रयोजन पाप नहीं, मेरी अपनी सीमाओं में रहकर मैं घर गृहस्थी को चलाऊंगा, उसमें मुझे जो आवश्यक कार्य है उनके करने में तो मुझे कुछ बुराइयां मेरे जीवन में आएंगी ही, लेकिन मैं जो प्रयोजन भूत नहीं है, निष्प्रयोजन है, उस कार्य से कम बच जाऊं। सीमा के निर्धारित कर लेने से उसके बाहर सीमा के, और फिर मेरा मन नहीं जाता है ना, मैं अपने मन वाणी और शरीर से उसके बाहर कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होता हूं, तब उस सबसे मैं मुक्त हो जाता हूं। और इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में जो प्रयोजन भूत कार्य हैं वे ही करेंगे, निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे, निष्क्रिय पाप भी नहीं करेंगे। रास्ते में चार लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम यहां खड़े खड़े देख रहे हैं, निष्क्रिय पाप शामिल है आप उसमें, ये ध्यान रखना, ये बहुत कठिन है मामला। इसीलिए जब तक हम इन चीजों का संकल्प नहीं ले लेते, त्याग नहीं करते, तब तक ऐसे निष्क्रिय पाप में हम लिप्त बने रहते हैं, एक तो बिना प्रयोजन का और दूसरा निष्क्रिय, हमने कुछ भी नहीं किया। सक्रिय कोई हमने हिंसा नहीं करी है, लेकिन जहां हिंसा हो रही थी हमने चुपचाप उसे सिर्फ देखा है, तब ऐसी निष्क्रिय हिंसा से भी हम बचें। कोई झूठ बोल रहा है और हम कुछ भी नहीं कह रहे, मन ही मन अगर हम समर्थन कर रहे हैं तब हम तो उसमें साथ में हैं, और अगर हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं पर मन में हम ये अवश्य कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं, ये बचने का उपाय है। कोई गलत कर रहा है तो हम उससे तो कुछ नहीं कह सकते, हम कहां कहां जाकर कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मन ही मन हम ये तो सोच सकते हैं कि ये ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं सोचते, अपन कहते नहीं ठीक है सब चलता है, ऐसे नहीं। अभी कल ही एक श्लोक आया है कि अकेले नदी में स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता, कल एक श्लोक मुझे किसी ने पढ़वाया उसमें बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है, महर्षि अगस्त के द्वारा लिखा हुआ, कि अकेले नदी में स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता, उसे तो दम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, अर्थात इंद्रिय और मन को विजय प्राप्त करने वाला जो तीर्थ है उसमें स्नान करने से। लेकिन अपन कुछ नहीं कह करके मन ही मन में ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, समर्थन हो गया उसका। उस निष्क्रिय पाप से अपन भी लिप्त हो गए। ऐसे बहुत सारे संसार के काम है, मैंने तो एक आपको यहीं के उदाहरण दे दिए, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगता है कि फिर क्या करें हम, क्या सबको ऐसे ऐसे समर्थन नहीं दें क्या, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर गृहस्थी के कार्यों में तो वैसे ही पाप कर रहा हूं, अब इस और निष्प्रयोजन और निष्क्रिय पाप से काय को मैं इसमें शामिल हूं, कम से कम मन ही मन यह ठीक नहीं है ऐसा कहने में क्या दिक्कत, किसी से कहने तो जाने ही रहे, ये स्वयं निर्धारित करना होगा। निष्प्रयोजन जो पाप है वो 5 प्रकार के, इन पर जरा सा विचार कर लें ताकि ध्यान चला जाए। मैं सिर्फ इसलिए इशारा कर रहा हूं कि अवेयरनेस बनी रहे, एक सावधानी बनी रहे, कौन कितना कर पाता है ये बिल्कुल उसका अपना इंडिविजुअल है, पर हमें इन चीजों पर विचार करके और हो सके तो उस निष्प्रयोजन, जबकि प्रयोजन भूत तो पाप करेंगी, माँ घर में रोटी बनाएगी तो बनाएगी, अब लेकिन 4 लोगों की रोटी बनानी है और 40 की बना के धन ली तो निष्प्रयोजन, सीधी सीधी सी बात, ये निष्प्रयोजन के मायने ही। एक बाल्टी पानी से और काम चलता है उसकी जगह पर 10 बाल्टी ढोल रहे, निष्प्रयोजन, ये सब कहलाती है प्रमादचर्या। प्रमाद पहले नंबर का अनर्थ, हमारे द्वारा निष्प्रयोजन जो पाप है वो ऐसे घटित हुए, हमने विचार ही नहीं किया और निष्प्रयोजन इस पाप में हम शामिल हो गए। और भी बहुत से उदाहरण, गांधी जी के जीवन का उदाहरण दें आपको तो शायद समझ में आए कि हम लोग कहां इस तरह बच पाते हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में सदगृहस्थ रहते हुए भी और कैसे पाप से बचे होंगे। प्रयाग में कोई कांग्रेस की मीटिंग थी जिसमें कि नेहरू जी के पास पहुंचे थे सब उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे, तो सुबह सुबह और मुंह हाथ धो रहे थे उसी समय चर्चा भी कर रहे थे, तो उस चर्चा के दौरान और ध्यान नहीं रहा, जैसे कि अपन भोजन करते करते चाय पीते पीते पेपर पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो नहीं ध्यान रहता, यही प्रमाद कहलाता है। एक काम को ठीक सावधानी पूर्वक ना करके और बाकी सब कामों के साथ जब उससे करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें और असावधानी होने की वजह से और व्यर्थ ही पाप हो जाता है। अब उस मुंह धोते समय जो लोटे भर पानी से मुंह धुल जाता था, बातों के दौरान वो कब लोटा खाली हो गया और मुंह नहीं धुल पाया, तो जैसे ही गांधी जी का ध्यान गया तो बड़े दुखी, तो नेहरू जी जोर से हंसे, बोले बापू आप भी कैसा कहते हैं, अरे एक लोटा और मिल जाएगा पानी, ये प्रयाग है, प्रयाग ये संगम है नदियों का, यहां पानी का कोई कमी थोड़ी है जो आप इतने व्यथित और चिंतित हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, नदियां सिर्फ मेरे लिए नहीं बहती है, वे सबके लिए बहती है, मेरी अंगुली में मेरे उपयोग में जितना पानी आता है उस पर मेरा अधिकार है, पानी को व्यर्थ बर्बाद करने पर मेरा अधिकार। पता नहीं हमारे आचार्य भगवंत छोटी छोटी सी बातों को भी और जानते थे और हमें उन सब से बचाने के लिए उपाय भी जाने, जबकि एक इंद्री जीव है, जल अग्नि वायु वनस्पति हवा, अच्छा है कि इस मंदिर में पंखे नहीं लगाए, नहीं तो वायु का एक जीवों की जान तो सांसत में ही है, हमारे जीवन में सुख मिल रहा है और उनका जीवन मरण को प्राप्त और हम सुखी हो रहे हैं। आप विचार करें, अपने मुंह हाथ धोने के लिए जो पानी हमने लिया है वो सब जलकायक जीवों की विराधना के बिना नहीं आता है। अपने थोड़े से सुख के लिए जो पंखे की हवा ली है, पंखे की हवा ली है यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप यहां से निकलकर पंखा चला हुआ छोड़ दिया, उस निष्प्रयोजन पाप के लिए कौन जिम्मेदार है? वो जो आपने अपने काम करने के लिए बिजली जलाई थी वो तो वहां तक ठीक था, लेकिन आप अपना काम करने के बाद भी बिजली जली छोड़ देते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कह रहे हैं ये सब प्रमादचर्या है, ऐसी होती है। अपने घर की तो बहुत सावधानी से करते, बाहर के लिए हाँ ये ध्यान रखना। इस निष्प्रयोजन पाप से बचने की सावधानी अपने पास होनी चाहिए। घर गृहस्थी में पांचों प्रकार के जीवों की विराधना होती है, सब जानते हैं, लेकिन जितनी मुझे आवश्यक है उतनी ही कर रहा हूं। दृश्य हिंसा को त्याग, लेकिन वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ ही में स्थावर जीवों के घात का कारण न बनूं। मैं किसी से बात करूं अपने वचन के द्वारा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं अनर्गल प्रलाप करूं तो यह तो मेरा निष्प्रयोजन ही पाप हुआ। जो प्रयोजन भूत बात थी उतना कर लिया, मैं अपने किसी काम से और घूमने के लिए गया हूं सामान लेने के लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं निष्प्रयोजन यहां से वहां टहल कदमी कर रहा हूं, यह सब निष्प्रयोजन पाप। विचार करना पड़ेगा, ये सब प्रमादचर्या में शामिल। रास्ते से चले जा रहे हैं और पेड़ पौधे देखे, उनको एक हाथ मारा, उधर नल बंद था उसको चालू किया, आगे बढ़े, ये सब निष्प्रयोजन। कभी ध्यान नहीं जाता इन सब की तरफ, बैठे बैठे कागज रखे हैं उनकी चिंदी चिंदी कर रहे हैं, फाड़ करके उनको फेंक रहे हैं, बैठे बैठे जमीन कुदेर रहे हैं, क्या है ये? बहुत सावधानी की आवश्यकता है। घर गृहस्थी में पाप तो होता ही है, लेकिन इस निष्प्रयोजन पाप को काहे को कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आचार्य पर। और दूसरी प्रमादचर्या के बाद कह रहे हैं हिंसा दान। अपने घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजों का ऐसा उपयोग करते हैं, अग्नि जलाने के लिए दिया सलाई भी रख रखी है, वो तो जब हमें काम होगा तब दिया सलाई से आग जलाएंगे, लेकिन उस दिया सलाई को दूसरे को देने से पहले जरा सावधानी रखेंगे कि ठीक हाथों में दी जा रही है, कि वो व्यक्ति उससे बीड़ी तो नहीं पिएगा, हाँ सिगरेट तो नहीं पिएगा मेरी दिया सलाई से। निष्प्रयोजन, मैंने तो छोड़ दिया लेकिन उसको व्यर्थ में मैंने वो सामग्री दे दी। अरे तो आपने नहीं दी तो कहीं से तो लेगा वो जाने, हमने तो नहीं दी, हम तो उस निष्प्रयोजन पाप में। मुझे अपने टाइम में याद है कि एक बाजू वाले दुकानदार ने, मैं छोटा सा था, रहा होऊंगा 6-7 साल का, लेकिन उस समय की थोड़ी सी डांट का याद है मुझे, इसलिए आपको बता रहा हूं। वो बाजू वाले ने मेरे से सामने की पान वाले की दुकान से 2 सिगरेट मंगवाए थे, और मैं बच्चा था तो मैंने कहा कि ठीक है ये बड़े व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं, तो मैंने उसको ला करके और दी वर्थी, उस पास से मेरा कान घर में उमेठा गया था। मना कर देना चाहिए कि वह कार्य जो हमारे योग नहीं है वह नहीं करेंगे, आपके कार्य हम कर सकते हैं लेकिन आपको सिगरेट ला करके नहीं। घर में आलू नहीं खाने वाला घर के अन्य सदस्यों के लिए आलू बाजार से खरीद के भी नहीं लाएगा, आप खाते हैं आप लाएगा, हम नहीं लाएंगे, हम निष्प्रिय। आप बहुत आश्चर्य करेंगे इन चीजों का, ये चीजें बिल्कुल आउट ऑफ डेट मालूम पड़ेंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ एक विचार कर रहा हूं आपको, बाई फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको जैसा करना वैसा करना, वरीड नहीं हूं, मेरी बात सुनकर के चिंतित मत, आप तो आसानी से जो कर रहे हैं पर जरा विचार करें, मैं तो सिर्फ एक विचार के लिए कह रहा हूं, घबराने के लिए नहीं कह रहा हूं, कितना कुछ कर रहे हैं अपन जो निष्प्रयोजन है, मैं ये कह रहा हूं। कभी ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ की हमारा जो वाकई जरूरी है उतना तो हम करें, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं, लेकिन हम ऐसी कितनी चीजें करते हैं, मैं सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहा हूं। ये कहलाता है हिंसा दान। घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजें हैं, कोई व्यक्ति हमारी माचिस ले जा करके और आग लगा ले तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, उस निष्प्रयोजन पाप के जिम्मेदार हम। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हिंसा के बहुत सारे सामान, और बाकी तो फिर दुकान में पेस्टिसाइड बेचना, इंसेक्टिसाइड्स बेचना, कीट मारक दवाएं, लक्ष्मण रेखा बेच रहे, खरीदने वाले का तो है ही लेकिन बेचने वाला भी उसमें शामिल है, मैन्युफैक्चरर डीलर, सेलर, कस्टमर, सब एक जैसा ही अपराध। निष्प्रयोजन, उसने तो अपने जीव राशि के लिए प्रयोजन था इसलिए किया था, आपने व्यर्थ में ही उसका समर्थन करके और अपराध कर लिया। जिसको प्रयोजन भूत नहीं है उसको ये सब हिंसा दान। अरे आप इसका उपयोग करो, हमने तो बहुत किया इसका उपयोग, आप करो फट से, सब चीटियां विटियां सब साफ हो जाती है इससे, करो तो आप, और नहीं ले आओ दुकान बता देते वहां से करिए। आप कर रहे थे उसको काहे को सलाह दे रहे हैं इस तरह की, ये बोल रहा हूं। बहुत बहुत आसान नहीं है ये तो, बहुत कठिन गृहस्थी में, लेकिन थोड़ा सा अगर सावधानी रखें तो ऐसी बहुत सी चीजों से चुप रह चुप्पी साधी जा सकती है, बचा जा सकता है, व्यर्थ ही हिंसा से बचा जा सकता है, व्यर्थ पाप से। और दुष्श्रुति इसमें तो बहुत आनंद आता है। दुष्श्रुति, दूसरे की बुराई सुना, निंदा पुराण, अगर वो एक बार शुरू कर दिया जाए तो घंटों चलता है। अच्छा बढ़िया पुराण है वो, और दूसरे पुराणों में नहीं लगता वो पुराण, अगर विस्तार लिया जाए और 10 लोग बैठ जावे तो घंटे भर तक आराम से उस पुराण का अच्छा चिंतन मनन अध्ययन किया जा सकता। निंदा नाम के पुराण किसी के बारे में भी कोई चीज शुरू, इसलिए ये निष्प्रयोजन अपराध बुराई है जिसमें कि कहीं कोई अपना हित नहीं हो रहा, कोई प्रयोजन नहीं सध रहा, दूसरे की बुराई करने में हमारा कौन सा प्रयोजन सध रहा बताइए। सुनने में दूसरे, लेकिन सुनने में रस आता है, निंदा रस, उससे जरा सा ऐसा लगता है, कंसोलेशन जिसको कहते हैं, सांत्वना मिलती कि देखो तो कैसे कैसे लक्षण है लोगों के, हम तो फिर भी अच्छे, ये थोड़ा स्वाद उसको, कुछ नहीं उसमें, इतने ही स्वाद के लिए दूसरे की निंदा सुनने का मन होता। कहीं कोई निंदा कर रहा हो तो बहुत जल्दी अपन उसका सुनना भी नहीं, समर्थन करना तो बात अलग है। कोई किसी के बारे में अगर निंदा की कोई बात कहे तो फौरन उससे कहें कि मुझे क्यों सुना रहे आप, मेरे कान इसके लिए नहीं मुझे मिले हैं। आप जाके उसी से कहें ना जिसके बारे में आप कह रहे हो हिम्मत, उसी को सुनाओ, मुझे क्यों सुना रहे बेकार में, मैं उसका समर्थन नहीं भी करूंगा तो मैं सुनने का पाप काय को करूं, निष्प्रिय। लेकिन इस आदत से, बल्कि अपन तो और कान और लगाए रखते हैं, कहीं से कुछ दिन भर में कोई एक बढ़िया सी बात सुन लेते हैं, बढ़िया सी मतलब दूसरे की निंदा की, दो लोग बैठे हुए हैं तो तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे तो सिर्फ उसकी निंदा की ही बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने बीच में और आहार के समय पर कई लोग पीछे आराम से खड़े होकर चर्चा करने लगते हैं तो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उनको इतना ही बोल दो कि भाई तत्व चर्चा हो गई, वो तो आ जाओ उसको, क्योंकि तत्व चर्चा तो होती नहीं, कोई कभी भी दो लोग मिलकर के ये नहीं कहते हैं कि सात तत्व कौन से हैं, छह द्रव्य कौन से, उनकी पर्यायों का क्या हिसाब किताब है, नहीं वो तो ये कहेंगे कि यहां जो चल रहा है उसमें क्या ठीक नहीं लग रहा उसकी चर्चा शुरू कर। आप देख लें हमेशा निष्प्रयोजन, जबकि कुछ नहीं कर रहे हैं, खड़े खड़े व्यर्थ में जो है अपना जी खराब कर रहे हैं दूसरी और चीजों को लेकर, व्यर्थ ही अपना मन, अपनी वाणी और अपने कान, सबको हम निष्प्रयोजन ही पाप कार्यों में लगाए रखते हैं, ये सावधानी क्या। और इतने ही नहीं, और चौथी चीज कह रहे हैं अपद ध्यान, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं भैया जी, ऐसे मालूम पड़ रहे हैं कि इनसे ज्यादा सीधा सच्चा कोई नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, बहुत कम बोलते हैं, बिल्कुल हाँ बुंदेलखंड में कहलाते घूम, हाँ बुंदेलखंड में कहते उनको घूम, घूम उसको और भी दूसरा शब्द है मुझे याद नहीं है, हाँ नहीं घूंगा नहीं, मतलब मनी मन सब देखते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, चुपचाप चलता रहता, घुन्ना हाँ अब आया वो घूमने घुन्ना, हाँ तो वो बिल्कुल वैसी अपन को भी सब देखते रहे, कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े शांत, लेकिन मन में क्या चल रहा है, मन में अपद ध्यान, दूसरे का ऐसा हो जाए, दूसरे का ऐसा हो जाए, मैं एक आध बार मौका मिलेगा तो ऐसी कड़ी बात कहूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगी, ऐसी प्लानिंग चलती रहती, ये सब अपद ध्यान कहलाता है। काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, कह तो ये रहे हैं कि किसी की धनहानि और किसी की हार जीत का विचार नहीं करना, व्यर्थ ही बैठे बैठे निष्प्रयोजन इस पाप में हम लिप्त हो जाते हैं, इस बुराई में हम लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं समझने वाला। बताइए, दूसरे के बारे में इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, क्या मतलब? टेलीविजन के सामने बच्चे बैठे रहते हैं, ये जीत जाए, ये हार जाए, इसने बहुत अच्छा किया, इसने खराब कर दिया, ये पाकिस्तान खेल रहा है तो हार जाए, मैं जीत जाऊं ऐसा नहीं, ये हार जाए, ये क्या है? निष्प्रयोजन पाप, ये कोई माफ नहीं करेगा। आग में आपने जानबूझ के हाथ डाला हो चाहे अनजाने हाथ डाला हो, आग तो जलाएगी, आपको माफ नहीं करेगी। ठीक ऐसे ही ऐसी बहुत सारी चीजें, एक दूसरे की हार जीत, चुनाव चल रहे हैं, सब उसी में मशगूल हैं, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, एनालिसिस कर रहे हैं, क्या इससे क्या प्रयोजन, क्या कुछ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कौन रप हो हम का हानि, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, इससे हमारी कोई ज्यादा हानि नहीं होने वाली। और अगर वाकई में इतना विचार है तो जरा सा ध्यान रखें कि किसको राजा बनाना है, मांसाहारी को बनाना है या शाकाहारी को बनाना है, सात्विक व्यक्ति को बनाना है या कि दुर्व्यसनी को बनाना है, फिर या तो फिर प्रयोजन अगर है तो प्रयोजन भूत करें कि मैं इसलिए इस बात पर विचार कर रहा हूं कि मुझे एक सात्विक व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, तो बिल्कुल जुदी बात हो जाएगी, वरना बैठे बैठे इसकी हानि उसका लाभ, इसकी जीत उसकी हार, इसमें हम अपना मन खराब करते रहे, अपध्यान कहलाता है। और इसीलिए शायद इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर के गांधी जी ने कुछ अलग नहीं कहा, उन्होंने इन्हीं चीजों से भगवान महावीर स्वामी की और इस परंपरा से जो चीजें आई उन्हीं से प्रेरित होकर के कहा होगा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, नहीं बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो है? और हम एक और उसके साथ कह रहे हैं कि बुरा मत सोचो, देखो बोलो और सुनो, ये तो ठीक है लेकिन सोचने का काम मन करता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वह भी अपराध है, वाणी और अपनी कर्म पर तो आपने लगाम लगा ली लेकिन मन पर भी लगाम लगाए, उससे बचें। और एक और पांचवें नंबर का है कि पापोपदेश, ये भी अपन बहुत करते हैं। देखो भाई, हमने तो ऐसा है कि चोरी का त्याग कर दिया है, अनुव्रत ले लिया है, लेकिन तुमने तो किया नहीं, तुम तो कर सकते, मैं बता सकता हूं। हाँ, देखो भाई, मेरा तो जो है इन इन चीजों का त्याग है, लेकिन आपने तो नहीं किया, ये चीजें ऐसे ऐसे बनती हैं, इनको ऐसे बनाओ तो बहुत आनंद। अरे वो हमने तो वो छोड़ दिया, रसगुल्ले छोड़ दिए, लेकिन क्या रसगुल्ले वहाँ वो कटंगी के आसपास बनते हैं साहब, क्या बनते हैं, और कभी कभी जाओ तो जरूर से वहां पर खाना। अब बताइए, आपने तो त्याग कर दिया लेकिन दूसरे को उस पाप करने के लिए प्रेरणा दी, व्यर्थ, कोई अपना उससे पर्पज नहीं होने वाला सॉल्व। ऐसा भी अपन कर लेते हैं, ये भी सावधानी की आवश्यकता, छोटी छोटी सी चीज है। और तीसरी आखिरी बात कह रहे हैं कि भोगों को भोग की सीमा रखना। ये तीन चीजें आज अपन ने एक साथ विचार कर ली, मुझे एक एक दिन विचार करना चाहिए, लेकिन जरा विषय उतना ही पर्याप्त है इशारा, क्योंकि फिर अपन जो अपने को वास्तव में सीखना चाहिए इन चीजों से तो बचने वाली चीजें हैं। हमारा सोचना यह है कि अच्छे काम में लग जाए तो बुरे के लिए हमारे पास समय ही नहीं मिलता, तो सबसे अच्छा बुरे का त्याग करने के लिए सबसे अच्छा है कि अच्छे काम में लग जाए। पर आने वाले समय में फिर विचार करेंगे, सामायिक वो बहुत जरूरी है, वो शिक्षा व्रत है। ये तो अपन ने गुण व्रतों पर विचार कर लिया, जिससे कि हमारे जो पांच हमारे भीतर आने वाली बुराइयां थी, हिंसा झूठ चोरी खुशी और जो परिग्रह, इन सब बुराइयों से बचने के लिए उन व्रतों में वृद्धि करने के लिए ये तीन हमने बॉर्डर लगा ली हैं कि हम मर्यादा से बाहर पाप नहीं करेंगे, निष्प्रयोजन पाप नहीं करेंगे, और जो हम कर रहे हैं उसमें भी एक बार उपयोग में करने के बाद फिर उपयोग में नहीं आती है वो सब भोग सामग्री कहलाती है, और जिसको एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से उपयोग में लिया जा सके वो उपभोग की सामग्री कहलाती है। यानी भोजन तो है भोग की सामग्री और वस्त्र आभूषण इत्यादि है उपभोग की सामग्री, इनकी कोई लिमिट होगी, इनकी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आज वर्तमान में यह हम ध्यान ही नहीं रख पाते हैं कि इन सब का हमें उपयोग तो करना है लेकिन हम किस सीमा तक, किस हद तक इनका उपयोग करें। पहनने ओढ़ने के कपड़े शायद हम कई लोग तो घर में गिनती भी नहीं होगी कि कितने रखें। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि कितने हैं, कोई सीमा कर सकते हैं आप? 1000-2000 के लिए आप कुछ मत कहिएगा, गिने ही नहीं कभी, उससे भी ज्यादा निकलेंगे। साड़ियां उससे भी ज्यादा निकल आएंगी, बताइए, 2000 से भी ज्यादा। जो जितना बड़ा होगा उसके पास उतना ज्यादा स्टॉक होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। 365 दिन की एक एक तो 365 ही हुई, लेकिन दिन भर में एक थोड़ी पहनी जाती, दिन भर में तो 10 अगर चेंज करेंगे तो 365 में 10 तो 3500 तो कम से कम, नहीं 3600 कितनी हुई, मैं तो गड़बड़ी भूल जाता हूँ, 650 है ना, इतनी तो होनी चाहिए। तो वो बहुत मुश्किल, उनका ध्यान ही कभी नहीं गया कि हमने कभी कोई सीमा ही नहीं रखी अपने उपभोग की सामग्री। भोजन की थाली पर कितनी चीजें आती हैं, उनमें से मैं कभी सीमा ही नहीं रखता हूँ, सुबह से उठ करके सीमा ही नहीं करता हूँ कि भोजन की, खाने पीने की सामग्री कितनी ही रखूंगा। आपको एक फैमिली का उदाहरण देना मैं चाहूंगा, जब कभी फैमिली में बात करूंगा तब अलग ही हो जाएगा, पर इस बीच में मुझे याद आ गया, सन 1980 की बात है। ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, अगर एक व्यवस्थित हम अपना जीवन जिए तो भोगो भोग की सामग्री को बहुत आसानी से हम बहुत लिमिटेड करके और बहुत सारे पाप से बच सकते हैं और हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से चल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, 1980 में आचार्य श्री के चरणों में कोई एक फैमिली अमरावती या उसके आसपास की आई थी, मुक्तागिरी में आचार्य श्री का चतुर्मास 1980 में, मैं आचार्य श्री के पास नहीं बैठा रहता था उस समय। तो वो लोग आए और हम उनकी बातें सुनने लगे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, दो बेटे एक बेटी और दोनों प्राणी, 5 लोग, और सबसे छोटा वाला बेटा 6 साल का है, एक 8-9 साल का है, गुड़िया जो है 12 साल की हो गई है, और वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 12 कोई उम्र बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन जब नियमों की बात आई तो सबने अपनी अपनी डायरी निकाल ली, मुझे आश्चर्य हुआ, सबके पास अपनी अपनी पॉकेट डायरी, छोटी सी डायरी उन बच्चों के पास, जिसमें कि उन्होंने डेली के नियम लिखे, आज क्या क्या करना। और पूछा जब आचार्य जी ने कि कैसा करते हैं आप, बोले हम शाम को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठते हैं, ये हमारे फैमिली का नियम, शुरू से नियम, कि कोई भी शाम 6 बजे कहीं भी हो उसे उपस्थित होना पड़ेगा खाने की टेबल पर, चाहे आप कितने भी कहीं हो, ये डिसिप्लिन है फैमिली का। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट गए हैं तो कोचिंग के वाले को भी कह दिया है, कह गया है कि नहीं उस वाले टाइम में आपको छोड़ना पड़ेगा, हम लेने आ जाएंगे लेकिन वो टाइम फिक्स है। आप आज की समस्याएं बताएंगे इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया, नहीं तो आप ये समस्याएं मेरे सामने बहुत जल्दी रख देते कि क्या करें महाराज साहब, हम ऐसा नियम बनाना भी चाहते पर बना नहीं पाएंगे। सब बातें जो है वो अपन ने अपने हाथ से इन चीज़ों को डिस्टर्ब किया है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं और इन सब के बावजूद भी, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उनमें सफलता नहीं पाई, ये तो सिर्फ हमारी बहानेबाजी है। पढ़ने वाले हमने भी जो है पढ़ा है, इतने बुद्धू तो नहीं रहे बिना कोचिंग के पढ़ा। हमारे टाइम में तो जो है अगर कोई किसी की ट्यूशन लगाए तो डल माना जाता था कि डल, ट्यूशन पढ़ना पड़ता, और यहाँ तो ट्यूशन किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं इससे पिताजी का कद बढ़ जाता है। बंसल में मेरा बेटा कोचिंग, बंसल में, अरे वाह, कोटा में और वो भी बंसल में, 1 फिट जैसे हाइट बढ़ गई, ऐसे चलते हैं अकड़ करके, ये क्या चीज है। और फिर उस बंसल में भी, और वो कह रहे हैं कि खाने पीने की कोई भी वो नहीं है, रात 8:30 बजे छोड़ा जाएगा तो 10 बजे खाना पड़ेगा तो खाओ, मगर पढ़ लो तो। और 3 लाख बैठते हैं IIT की स्क्रीनिंग में, 18,000 का सिलेक्शन हुआ था, बाकी सब रिजेक्ट, बैठे रहो आप, अपने अपना धर्म भी बर्बाद किया और आखिरी में आप असफल भी हुए और निराश होकर घर लौट जाओ, अभी स्क्रीनिंग में ही, और 18,000 में से 3,000 निकले, बाकी 3,000 एक नंबर वाला रिजेक्ट करो। अपना धर्म भी खोया, अपने जीवन में बुराइयां भी लाई और असफलता भी पाई, क्या मिला? मैं इशारा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां भेजना बंद कर दें, साथ साथ में अपना धर्म भी बना रहे, इसकी इसकी कोशिश भी करें। इसके लिए कभी कोशिश की कि नहीं की? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, तो आप ये समझें कि बच्चों को आईआईटी की कोचिंग के लिए मना कर रहे हैं, नहीं मैं तो उनकी पीठ थपथपाता हूँ अभी आ जाएंगे तो। पर साथ में ये भी कहता हूँ कि सबेरे से कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने ही बजे खुलता हो, लेकिन मुझे अपने जिनालय के दर्शन करने जाना पड़े तो पहले नंबर 10 किलोमीटर भी जाना पड़े तो जाऊँगा, और शाम को कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसको बढ़वाऊंगा सब लोग मिल करके, और बढ़ भी गया है ध्यान रखना, सिर्फ जैन बच्चों के लिए 20 मिनट का इंटरवल हो गया 10 मिनट की जगह, कोशिश करने पर 3 महीने रहा वहां पर, कि ये तो टाइम 6 बजे का छोड़ना ही पड़ेगा ताकि वे अपना भोजन टिफिन और उस समय खा सके, उन्हें रात में नहीं खाना, तब भी पढ़ाई हो सकती, ऐसा नहीं कि नहीं होती पढ़ाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, और ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपसे कि वहां बंद कर दें। तो बात घर निकल गई अपन के उस चीज से, पर रिलेवेंट तो है, रिलेवेंट नहीं है, उसी से जुड़ी हुई चीज है। मैं उस समय की बात आपसे कह रहा था, और मेरे दिमाग हाँ सनुंदी स्वास्थ्य में, और वो फैमिली बैठी हुई है और वो अपने डायरियां निकाल करके कि कौन क्या करता है, शाम को नियम है उनका कि एक साथ बैठेंगे और फिर बाद में कल का शेड्यूल तय होगा। मैं कहना ये कैसे शेड्यूल तय होता है, सबसे छोटे बेटे से पूछा जाता है कि कल कौन सी सब्जी खाओ, तुम्हारी चॉइस, ताकि कल के दिन वो सब्जी ना बने तो तुम दुखी ना हो, संक्लेश ना हो, इसलिए तुम्हारी चॉइस, मुझे ये सब्जी अच्छी लगी। बड़े वाले बेटे से पूछा, नहीं ठीक है छोटा भैया कह रहा तो मैं भी यही, उससे दीदी क्या बोलेगी, मैं भी यही, और फिर माता पिता तो वही, तो कल एक ही सब्जी बनेगी और सबको पसंद है, नहीं तो इनके पसंद की अलग, उनके पसंद की अलग, उनके पसंद की अलग, भोगो भोग की परिमाण हो गई, सीमा हो गई, और इंटरेस्ट भी पूरा का पूरा। और कल देखो तुम्हारा गला जरा खराब है, क्या सोचा है तुमने, क्या करना चाहिए पापा इसके लिए, कुछ नहीं, तुम तली हुई चीजें मत खाओ, गला खराब है, ठीक है तली हुई चीजों का कल का त्याग, तुम्हारा हमारा भी, तुम्हारा हमारा भी, पांचों जन कल कोई तली हुई चीज नहीं बनेगी घर में, ताकि घर में तली हुई चीज बने और एक ना खाए, ऐसा होता नहीं, मन हो ही जाता है, ललक जाता है कि मैं भी खा लूं। आप आश्चर्य करेंगे उनकी ये बात सुन करके, और मेरे सामने ये घटित हुआ, रोज वो इस तरह से तय कर लेते हैं और उनका बहुत वेस्टेज ऑफ मनी बच जाता है, और सब इंटरेस्ट के साथ में अपना, और सबसे मजे की चीज सबकी डायरी में लिखा था कि आधे घंटे समाज सेवा, बाकी सब तो ठीक है। इतना छोटा सा बच्चा 6 साल का क्या समाज सेवा करेगा? आचार्य जी ने पूछा कैसे करते, बोले कुछ नहीं, बाजू वाले कॉलोनी में किसी के घर चले जाते हैं, 2-2.5 साल का 1.5 साल का बेटा अगर ऊधम कर रहा है तो उसकी माँ को बोल देते हैं कि आप आधे घंटे की निश्चिंत हो जाइए, हमारा ये छोटा बेटा अपने साथ उसको खिला लेगा, आप अपना दूसरा काम करें, समाज सेवा। हम चले जाते हैं बाजू वालों के यहाँ पर, उनका काम पड़ा होता है उसमें हाथ बटा देते हैं, आधे घंटे झाड़ू पोछा लगाना हो तो लगा देते हैं, लेकिन अपना अहंकार तोड़ना पड़ता है। सौदा लाना है तो लाओ हमें दे दो आप पैसा, और क्या क्या लाना है हम बाजार से आपका आधे घंटे में खरीद के ला के आपको रख देते हैं। आधे घंटे पांचों जन समाज सेवा भी कर रहे हैं और अपना जीवन भी चला रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसी आदर्श परिवार की कोई परिकल्पना हो सकती, सिर्फ परिकल्पना हो सकती है ना, सोच भर सकते हैं, बाकी अपने बस का नहीं है, एक आध के बस का नहीं, कोई के बस का नहीं मुझे मालूम, क्योंकि प्लान इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको दोषी ठहरा रहा हूं, नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने शुरू से वैसा प्लान ही नहीं किया। अब जब इतना समय हो गया तो अब तो बहुत जो बेतरतीब हो गई उसको फिर तरतीबन करना बहुत कठिन हो, और शुरू से ही अगर हम इस तरह से अपना जीवन शुरू करें, आने वाली पीढ़ी को ऐसा संदेश नहीं दे सकते कि इस निष्प्रयोजन पाप से बचने के लिए भोगो भोग की सीमा शुरू से ही रखना। जब बच्चों के समझदार होने लगे तभी से उनको बैठ करके ये शिक्षा दे देना कि व्यर्थ पाप क्यों करें हम, हमने जब भोगो भोग को रखा भी है तो उसके लिए हम कैसे सीमित कर सकें। मैंने कल एक उदाहरण नहीं दिया था विनोबा के जीवन का और यशपाल के जीवन का, मैं उसको उदाहरण को देख करके बस अपनी बात पूरी करता हूँ, आपका समय भी हो गया, छोटी छोटी सी घटनाएं हैं, शायद हो सकता मेरे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की हो, भूल जाता हूँ, पर ऐसे मौके पर रिवाइज करने में कोई हर्जा नहीं। जेल में रहे थे वो 13 महीने तक सत्याग्रह की उस, और वहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ों में उनने 13 महीने गुजारे थे। जब वापस आ गए आश्रम में तो देखा कि उनके कमरे में उन्होंने सब चीज़ें हटाना रख कर दी कमरे में से, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, उतनी चीज़ें रख ली। तो लोगों ने कहा कि बाबा विनोबा, भाभे को बाबा बोलते थे, बाबा अब तो आप जेल में नहीं हैं, अब तो आश्रम में आ गए हैं, अब काहे को हटा रहे हैं इन चीज़ों को, अब सब रखिएगा ये चीज़ें। नहीं, जेल में 13 महीने रह करके मुझे समझ में आ गया कि मेरी आवश्यकता क्या थी। बाकी सब चीजें तो अनावश्यक ही मैंने रख रखी हैं। जितने में मैंने 13 महीने जितनी थोड़ी सी चीजों में 13 महीने गुजारे हैं, अब तो जीवन भर भी उतनी ही चीजों में गुजारे। और उसके बाद से उन्होंने उतनी ही लिमिटेड चीजों में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। अपन तो अपरिग्रह का दर्शन लेकर के बैठे हुए लोग हैं। विरासत में अपरिग्रह की अपने को अवधारणा मिली, भोगो भोग के परिमाण की अपने को अवधारणा विचार अपने को विरासत में मिला। उन्हें तो नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो किया। यशपाल जी के जीवन की घटना तो मेरे सामने 1993 में घटित हुई। उनको प्रतिभा सम्मान में बुलाया गया था, उनका स्वयं का सम्मान किया गया था और 2 घंटे के लिए आए थे और 3 दिन रुक के गए। बहुत संस्मरण सुनाए उनने अपने गांधी जी के साथ, वो सब में बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब वो चले गए तो उनके जीवन का संस्मरण आपको सुना रहा हूं। बताइए, ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके यहां पर रुके थे, विदा लेते समय अचानक खादी की बनियान पहनते थे, भीतर ये वाली बनी बनाई नहीं, खादी की बनवा करके बनियान बनती भीतर वो पहनते थे, वो उनकी भूल गए और चले गए दिल्ली। वहां से समाचार आया कि भाई तेरा ढूंढ लेना, घर में बनियान रह गई है, भेज देना कोई आता जाता। अब इनने ढूंढी, नहीं मिली तो इनने सोचा कि 2-4 दिन में दिल्ली तो जाना ही है, कपड़ा ले चलते हैं और दे आएंगे। कपड़ा नहीं लेंगे तो जो भी उसका पैसा है वहीं से पैसे से कपड़ा खरीद कर उनको दे देंगे अगर आ जाए। गए वहां पर दिल्ली और उन्हें खादी का वह कपड़ा खरीद करके बनियान के लिए कहा कि दूसरी बनियान बता दो साइज, हम ले करके बनवा लेंगे। बोले क्यों, उस बनियान का क्या हुआ, नहीं मिली क्या? बोले नहीं मिली। बोले फिर तो रहने दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं, आप ले रहे हैं, हमारे हाथ से घूम गई है। अब तो वो बनियान 2 महीने तक चलती और 2 महीने तक तो नई नहीं सिलवाऊंगा, एक ही से काम चलाऊंगा। गांधी जी ने हमें यही सिखाया है, उस अपराध की सजा यही है कि तुमने अपनी उस चीज को खोया क्यों नहीं संभाल के रखा। वो भोगोपभोग की सामग्री जो तुमने अपने लिए रख रखी थी, उसकी संभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसे उसे नष्ट करके और दूसरी लाई जा सकती है। ऐसे तो हर एक कोई ऐसा सोचेगा तो कितनी चीजों का अपव्यय होगा, व्यर्थ ही पाप होगा। ऐसा सोच है क्या? नहीं, थोड़ी खराब हो जाए देख लो दूसरी लाओ है? नहीं, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आज तो जो ना मैंने बहुत कैसी कैसी बातें, एक भी काम की नहीं है ना, एक भी नहीं काम की। इनसे क्या होने वाला है, इससे हम क्या करेंगे? नहीं, अगर हमारा थोड़ा भी अवेयरनेस हो जाए, थोड़ी भी सावधानी हो जाए तो इसमें से अपन और भी, मैंने तो थोड़े छोटे से उदाहरण दिए, अपने घर गृहस्थी में आप थोड़ी खुली हाथ से देखेंगे तो अपने को खुद ही हंसी आ जाएगी कि बिना प्रयोजन के काहे को मैं ये काम कर रहा हूँ, छोड़ो बंद कर दिया। आज से अगर अपन ये भर सोच लें कि जहां मुझे लगेगा कि ये निष्प्रयोजन है, ये मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस काम से मैं अपने को विड्रॉ कर लूं, उस काम से अपने को बचा लूं, तब भी बहुत सारे ऐसे पाप से और बुराइयों से अपन बच सकते हैं। बुराइयां अपने जीवन में हैं भैया, प्रयोजन बस हमें बहुत सारी बुराइयां करनी पड़ती हैं जीवन में, सुबह से शाम तक हमें बहुत से अपराध करना पड़ते हैं घर गृहस्थी में रह करके। लेकिन ऐसे अपराधों से, ऐसी बुराइयों से जिनका कि हमारे जीवन में कोई भी प्रयोजन नहीं है, उनसे तो हम आसानी से बच सकते हैं। उद्देश्य हमारा इतना सही है, इसी भावना के साथ कि हम छोटी छोटी सी बुराइयों को हटाकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्या,
मेरे बैठने से वो आते ही नहीं, पर हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे अपने जीवन में आना शुरू होगी। हम सोचते थे कि लीला महाराज, जब पहले हम इस अवस्था में नहीं थे तो रास्ते में चलते थे तो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कौन निकला, कौन आया, कौन गाड़ी गई, तो हम सोचते थे कि ये मुनि महाराज वगैरह कैसे चलेंगे फिर ऐसे। लेकिन अब जब रास्ते पर चलता हूं तो कहीं नहीं ध्यान जाता है, ध्यान 4 हाथ आगे ही जाता है। ये कैसे हो गया? क्यों? 22 वर्ष का तो अभ्यास ही था कि यहां वहां देख के चलना, लेकिन ये एक क्षण में कैसे परिवर्तित हो गया? इसका मतलब है कि हो सकता है, हो सकता है यदि हम तय कर ले तो। आचार्य महाराज ने बहुत सारे डिसिप्लिन अपने जीवन में खुद लगाए और हम लोगों को इशारा किया कि देखो ऐसा कर सकते। वे कब से इस नियम का पालन कर रहे हैं कि थूकेंगे नहीं, आप सोच सकते हैं? मेरे तो बस का नहीं है, बहुत मुश्किल लगती, मुंह में अतिरिक्त थूक ही नहीं आने देंगे कि उसे थूकना पड़े और जहां थूकेंगे वहां पर जीव राशि का घात होगा। बताइए आप, सोच देखिएगा, भी बहुत छोटी सी चीज है, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज नहीं लगती ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारे अपने जीवन में जिनका हमें कोई महत्व नहीं लगता, लेकिन जिन क्रियाओं के माध्यम से और हम अपनी जो जीवन पद्धति है उसमें अहिंसा को प्रवेश न दे करके हिंसा को प्रवेश दे देते हैं। साधन मेरा शरीर भी है, साधन मेरी इंद्रियां भी हैं, और दूसरे जो साधन है वे तो है ही, मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, ये सब मेरे लिए साधन की तरह मिले हुए हैं। इन साधनों की पवित्रता बनाए रखना है, क्योंकि मेरा साध बहुत पवित्र है और पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए, और साधन तब पवित्र होते हैं जब उनका सदुपयोग करते हैं, तब वे पवित्र होते हैं। मैं अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूं तो मैं वाणी का सदुपयोग करूं, और वाणी के सदुपयोग के मायने ये है कि मेरी वाणी से दूसरे का हित हो, मेरी वाणी दूसरे के लिए और उत्थान में कारण बने, उसके लिए तकलीफ पहुंचाने में कारण न बने। हो गया वाणी का सदुपयोग, हो गई वाणी की पवित्रता। मेरा कोई भी शरीर से होने वाला कर्म किसी दूसरे के लिए हार्मफुल ना हो, एक मौके पर ही सही, घबराया नहीं करें आप, जब मैं ऐसा बोलता हूं तो थोड़ा सा सन्नाटा खिंच जाता है, लोग एकदम कि ऐसा संभव है क्या, ये तो बातों बातों में अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, घबराते क्यों अपन, मैं वाणी से कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे दूसरे की क्षति हो, क्या एक मौके पर ऐसा नहीं कर सकते? अभी जब मेरे मन में आया था कि अपने बच्चे का कान जोर से उमेटे और एक तमाचा लगाए, रोक ले अपने आप को, इतना नहीं कर सकते? वैसे तो हाथ हिलाना पड़ेगा, वैसे तो चलना पड़ेगा, वैसे तो और भी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी फिजिकल, उनमें हिंसा हो रही है। लेकिन जब मैं इंटेंशनली किसी को क्षति पहुंचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता हूं, उससे मैं नहीं समझ सकता क्या मैं, फिर क्यों अपन घबरा जाते हैं? हम ऐसे ही मौकों पर चूक जा रहे हैं, उसके लिए हम बैठ के विचार कर रहे हैं कि अब हम ऐसा अवसर आएगा जब इंटेंशनली मेरे शरीर जो कि मेरा साधन है दूसरे की मदद करने का, मैं मदद नहीं कर पाया दिन भर में अपने शरीर से किसी की, तो मैं किसी को इंटेंशनली क्षति तो नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे जीवन जीने से हो सकता है, मेरे अनजाने में दूसरे की क्षति हो सकती है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसकी क्षति करूं, लेकिन फिर भी हो सकती है। पर इतना तो कर सकता हूं कि जानबूझकर मैं अपने शरीर से किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊं, मेरे मन में मैं जानबूझकर दूसरे के लिए खोटा विचार न करूं, इतना सदुपयोग नहीं कर सकता हूं कि अपने विचारों का, अपने मन का, मेरे मन को कोई जरूरी नहीं है कि मुझे मन मिला है तो मुझे खोटे विचार ही करना पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैं घर में टेलीविजन लाया हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसमें गंदी चीज भी देखूं, मेरा टेलीविजन है इसलिए मैं उसमें जो देखना चाहूंगा ठीक ठीक वो देखूंगा। तो ऐसे ही मुझे मन मिला हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं, मुझे मिला हुआ है तो मैं उसमें गंदा विचार लाऊं, मैं तो अच्छा विचार ही लाऊंगा, क्या ऐसा नहीं सोच सकते हैं? तो इन सब साधनों की पवित्रता बनी रह सकती है और इनका हम सदुपयोग करके और अपने साध को जो अपनी अहिंसक जीवन पद्धति उसको प्राप्त कर सकते। एक चीज और हम देखें, हमारे अपने जीवन में सामाजिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का हमारा जीवन है। वो जो एक व्यवहारिक या कि सामाजिक हमारा जीवन है, हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, लेकिन हमारा जो एक व्यवहारिक और एक सामाजिक हमारा जीवन है, उसमें हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? व्यक्तिगत तौर पर तो हम अपने आप से कई बार नाराज हो जाते हैं, तो अपने आप से नाराज हो जाने पर तो हम अपनी कमियों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन दूसरे से कभी हम प्रतिक्रिया के दौरान नाराज हो जाते हैं तो उसे ठीक करने का क्या उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरे से हम असंतुष्ट हो जाते हैं तो कभी हम अपने उस असंतोष के चलते उसकी क्षति तो नहीं पहुंचा देते हैं? ये बहुत छोटी सी चीज है, यानी मैं सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्या प्रतिक्रिया करता हूं, मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक है या कि नकारात्मक है, मेरी प्रतिक्रिया जो है वो दूसरे को पतन में कारण बनने वाली है या दूसरे के उत्थान में कारण बनने वाली। दूसरे ने मेरे लिए जो कुछ भी एक्शन किया है, मैं उसका जो रिएक्शन करता हूं, मैं सावधानी पूर्वक करता हूं या कि बहुत गाफिलता और असावधानी पूर्वक कर देता हूं, हैबिचुअल हूं जिन चीजों के लिए। जैसे कि हम तो घर में ऐसा किया करते थे, आप भी करते होंगे, लेकिन आपसे ऐसा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मां ने कुछ कहा, यह काम कर दो, नहीं करते, अभी टाइम नहीं हमारे पास, फिर बाद में दो मिनट के बाद, अच्छा बताओ क्या करना है, बाद में कहते। लेकिन पहले नंबर क्या प्रतिक्रिया होती, क्यों? आदतन। किसी ने भी कुछ भी कहा, सबसे पहले हमसे नहीं होता, हम नहीं करेंगे, फिर बाद में कंसीडर करते हैं। हैबिट इस तरह हमारे जीवन में बन गई है, उसको हम तोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को बाद में भी एनालाइज कर सकते हैं कि मैं इसकी जगह प्रतिक्रिया कैसी कर सकता था, मैंने की कैसी प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया से मेरे जीवन में हिंसा और अहिंसा कितनी आई है ये मालूम पड़ता है। जिसकी प्रतिक्रिया जितनी सकारात्मक है, उसका जीवन, उसकी जीवन शैली उतनी अहिंसक है। राम तीर्थ हुए हैं, शिवाजी के गुरु थे वे, और एक बार वे गर्मी के दिनों में और रास्ते से चले जा रहे थे, प्यास बहुत लगी, तो गन्ने वाले के खेत पर पहुंचे। वहां पर वो जिसका खेत था वो कहीं चला गया था, लेकिन इनको प्यास बहुत लगी थी, तो इन्होंने कुछ भी साधन नहीं दिखा प्यास बुझाने का, पानी वगैरह, तो एक गन्ना तोड़ करके और उसको चूस करके खा रहे थे वो। अब उतने में आ गया वो गन्ने के खेत का मालिक, उसने जैसे इनको गन्ना खाते देखा और एक गन्ना वहीं पड़ा हुआ था, उससे इनकी अच्छी खासी मरम्मत कर दी। प्रतिक्रिया है। अब प्रतिक्रिया, क्योंकि उसे तो यह लगा कि वैसे ही मैं गरीब और मुश्किल से गन्ने की इतनी फसल आई, मैं बेच करके चार पैसे कमाऊं, और ऐसे इनके जैसे लोग अगर रोज आकर के मेरे गन्ने तोड़ के खाने लगे तो कैसे पूरा पड़ेगा। ठीक है, उसका ये प्रतिक्रिया उसकी, अपन को लगेगा कि ठीक है। दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया भी की जा सकती थी। वो कह सकता था कि आपने गन्ना खाया, क्या आप इस गन्ने के दाम देना मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपने खा लिया है, बहुत अच्छा किया, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप इसका दाम चुका सकेंगे क्या? नहीं चुका सके तो आज नहीं, आप कल दे देना, परसों दे देना, जब आपको बने तो आप चुका देना, क्योंकि मैं इतना वियर नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते क्या? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया तो हमने फौरन कर दी कि हम उसका, तो क्या इससे, इस जो हमने नकारात्मक प्रतिक्रिया की, उनको पिटाई कर दी, तो उससे कुछ मिला क्या? गन्ना वापस मिल गया क्या? पैसे मिल गए क्या? बल्कि एक हमारे भीतर संस्कार दूसरे की क्षति का, और अब दूसरे से अपने को सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास चलेगा कि मैंने दूसरे की क्षति करी है, अब वो मेरी कभी भी किसी भी समय क्षति पहुंचा सकता है मुझे। ये हम रोज करते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया करके हम अपने को अनसेफ भी करते हैं, और इतना ही नहीं, हम अपनी जीवन पद्धति को भी हिंसा की तरफ धकेल देते हैं। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। राम तीर्थ की पिटाई हुई थी, इसलिए खबर शिवाजी तक पहुंच गई। सामान्य आदमी की होती तो बात अलग थी, अब राम तीर्थ और शिवाजी के गुरु और उन्हीं का राज। शिवाजी ने उस किसान को बुलाया जिसने उनके गुरु की पिटाई की थी। आया वो, जैसे ही रामतीर्थ को मालूम पड़ा कि उसकी शिकायत शिवाजी तक पहुंच गई और उसको बुलाया गया है, ये उसके पहले ही पहुंच गए दरबार में, और दरबार में जैसे ही पहुंचे तो रामतीर्थ के पहुंचने पर तो खुद ही खड़े हो गए शिवाजी, और अपने पास में आसन दिया, जाकर के बैठे, और इनके बैठने के बाद वो किसान आया, थर थर कांप रहा था वो कि मेरे से हुआ क्या, और अब तो और ज्यादा उसको मुश्किल खड़ी हुई जब उसने देखा कि शिवाजी के ठीक बाजू में वही व्यक्ति बैठा जिसकी मैंने पिटाई करी थी। समझ में आ गया उसको कि मामला क्या हुआ, अब तो बहुत मुश्किल है। और जैसे ही शिवाजी ने पूछा कि तुमने अपने खेत में गन्ना खाने वाले किसी व्यक्ति को गन्ने से पीटा है, उसने कहा कि पीटा है। क्या इसमें छुपाने की बात है? क्योंकि जिसको पीटा है वो सामने बैठा हुआ है, अब इनकार करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्वीकार करता हूं मैंने पीटा। तो इसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सब दरबारियों से कहा गया कि इसको क्या सजा देनी चाहिए। सब आपस में तय करने लगे कि चूंकि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है और पहले बता दिया गया था कि शिवाजी के गुरुजी को पीटा है, तब तो अपराध और बड़ा हो गया है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबने कहा कि बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। गुरुजी धीरे से खड़े हुए, शिवा पीटा मुझे है इसलिए दंड देने का अधिकार मुझे होना चाहिए, तुम्हारी राज्यसभा क्या कहती है? सबने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शिवाजी ने भी कहा कि गुरुजी बिल्कुल ठीक है, दंड देने का अधिकार आपको है। तो राम तीर्थ ने खड़े होकर के कहा कि शिवा, दंड स्वरूप इसी यदि हो सके तो तुम इस गरीब किसान को 5 गांव दान में दे दो। अरे, सब लोगों ने कहा कि ऐसा भी कोई, ये तो दंड ना होकर के पुरस्कार हो गया। आप तो कह रहे हैं कि दंड स्वरूप 5 गांव दे दो, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर ये इतना गरीब ना होता तो ये मुझे नहीं पीटता, इसने मजबूरी में और मुझे पीटा है। इसके मन में मेरे मुझे पीड़ा पहुंचाने का भाव नहीं था, अपनी क्षति होते देख करके इसने ये प्रतिक्रिया की थी। सोचिएगा कि इतनी गलत प्रतिक्रिया करने पर भी और राम तीर्थ की प्रतिक्रिया देखिएगा कितनी पॉजिटिव है। वैसा अपन कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं। आज जाके जरा देखना पड़ेगा अपनी लिस्ट में कि कौन कौन सी कितनी कितनी बार और अपन ने क्या कहते हैं उसको बुंदेलखंडी में रार ठानी, रार रार के शत्रुता, किन किन लोगों से हमने लड़ाई मोल ली है अपने हाथ से और उन लोगों के प्रति क्या हम अपनी ऐसी ही ठीक ठीक सही प्रतिक्रिया कर सकते हैं? अब तो आज भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी जीवन पद्धति को। इस तरह यदि हम अपने जीवन में विचार करें तो अपने जीवन को अहिंसक बनाया जा सकता है। थोड़ी सी और सावधानी रख ले, वो सावधानी के बारे में विचार कर लेते हैं आज अपन। यकी रहने दें, नहीं अब तो बहुत लंबा हो जाए, 4:09 हो गए। वो चैप्टर बिल्कुल अलग देखेंगे। क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं हमारे यहां। इसीलिए इस अहिंसक जीवन पद्धति को जीवन में लाने के लिए सबसे पहले भावों की तरफ ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। हम कर्म जो भी करते हैं उनमें कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके पीछे जो हमारी करने की भावना है वो महत्वपूर्ण होती है। उस पर बिल्कुल अपन अलग विचार करेंगे। आज इतनी ही बात अपन ने सीखी कि हमारी जो जीवन पद्धति है उसमें जितना हो सके हम स्वावलंबन को महत्व दें, जितना हो सके हमें जो साधन मिले हैं उनका सदुपयोग करें, हमारा जो व्यवहारिक और सामाजिक जीवन है उसमें हम अपनी प्रतिक्रिया देखें, वह प्रतिक्रिया सकारात्मक है या कि नकारात्मक है। एक चीज जो मैं मिस कर रहा था वो और इसी से जुड़ी हुई है, हमने जो संबंध अपने व्यवहारिक और सामाजिक बनाए हैं उनको भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एक अहिंसक जीवन पद्धति वाले को अपने संबंध तो दूसरे के प्रति अच्छे ही बनाना चाहिए। इसमें भी हम बात कंजूसी कर लेते हैं। नौकर और मालिक का भी एक संबंध है, जैसे शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है, जैसे मां और बेटे का संबंध है, जैसे कि हमारे और भी सामाजिक पारिवारिक संबंध हैं। एक देश के राजा और प्रजा के बीच भी संबंध है। कितने सारे संबंध निर्मित करके हम अपना जीवन जीते हैं। हमने तो अपनी तरफ से एक संबंध भगवान से भी बना रखा है, और तो दूर की बात तो छोड़िएगा, और सबकी तो छोड़िएगा, भगवान ने हमसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया, वे अपने आप में आनंद में है, हमने उनसे संबंध स्थापित किया, श्रद्धा का संबंध। ये सिर्फ मनुष्य के ही बूते की बात है कि वो इतने सारे संबंध स्थापित करता है, क्योंकि वे संबंध उसके जीवन को जीने में मदद देते हैं। लेकिन मजा ये है कि वे तभी तक संबंध जीवन जीने में मदद देते हैं जब तक कि उनमें स्वार्थ नहीं आता है। बाकी फिर जैसे ही कोई भी संबंध हो, चाहे वो बेटे और मां का हो, चाहे वो एक व्यक्ति और उसके अपने जीवन साथी का हो, कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, कितना भी माने इसको कहें अपन ब्लड रिलेशन भी क्यों ना हो, और संबंध तो छोड़िएगा, उनके बीच में भी जिस क्षण से स्वार्थ आना शुरू होता है फिर वे संबंध हिंसा की तरफ ले जाने लगते हैं, जबकि सारे संबंध हमारे जीवन पद्धति को अहिंसक बनाने के लिए हमने निर्मित किए थे। कब से, जब भोग भूमि खत्म हुई थी और हमने कर्म भूमि की शुरुआत की थी, तब से अपनी आजीविका के लिए हमें लोगों से संबंध बनाने पड़े, अपने जीवन यापन के लिए हमें संबंध बनाना पड़े, और उन संबंध